क्या है विशेष, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली हिंदू कैलेंडर के हिसाब से समझेंगे। सुनते तो बहुत दिन से आए हैं लेकिन जानते नहीं हैं, तो कैसे जाने इसको, उसका विशेष यहाँ पर वर्णन आज हम पढ़ेंगे। आप ये जानते हैं कि भगवान की दो आंखें हैं, जैसे एक आंख है भगवान की सूर्य और एक भगवान की आंख है चंद्र। तो जब हिंदुओं का जो ये नव वर्ष प्रारंभ होता है, कहते हैं ये देवताओं का मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त होता है। कौन से दिन बनाया जाता है मकर संक्रांति? 14 जनवरी। तो ये 14 जनवरी का जो दिन है, अगर आप देखें तो हमारे जोडियक कैलेंडर में हिंदुओं के अंदर दो प्रकार के कैलेंडर्स हैं, एक है चंद्र कैलेंडर और एक है सूर्य कैलेंडर। चंद्र कैलेंडर में चंद्रमा हर 2.5 दिन बाद अपनी दिशा बदलता है, लेकिन सूर्य एक महीने के अंदर अपनी राशियों को परिवर्तित करता है। तो हमारे जब जन्म होता है तो कुंडली बनाई जाती है, उसमें कितनी राशियां होती हैं? 12। जोडियक साइंस इसे बोलते हैं, तो जोडियक साइंस आर 12। तो उन 12 जोडियक साइन जो है ना, वो शुरू होते हैं कहां से? तो जब पृथ्वी पर एक 12 घंटे गुजर जाते हैं, मतलब यहां पर 6 महीने गुजरते हैं, तो देवताओं के 12 घंटे गुजरते हैं। जब यहां फिर अगले 6 महीने गुजर जाते हैं तो देवताओं के फिर 12 घंटे गुजर जाते हैं। इस प्रकार से देवताओं का एक दिन गुजरता है और हमारा एक वर्ष गुजर जाता है। तो इसका मतलब जब देवता सोया तो 6 महीने रात्रि रही, और फिर जब देवता उठा तो कौन से दिन उठता है देवता? 6 महीने बाद। तो जो मकर संक्रांति का दिन है, संक्रांति का दिन होता है जब सूर्य मकर राशि में संक्रमण करता है, प्रवेश करता है, इसको संक्रांति कहते हैं। तो हर महीने संक्रांति आती है, लेकिन मकर संक्रांति इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इस दिन से सूर्य जो है उत्तरायण हो जाते हैं, उत्तर की ओर जाते हैं, और फिर 6 महीने बाद कर्क राशि में कहां चले जाएंगे? दक्षिणायन में चले जाएंगे। तो मैं कैलेंडर निकाल रहा था, मैं पढ़ रहा था कि कैलेंडर में अगर हम देखें तो सबसे पहले आती है जो मार्च में राशि आती है, मेष राशि आती है ना। मेष राशि मार्च अप्रैल के महीने में जो ये मेष राशि है, जिसे अंग्रेजी में एरीज कहते हैं, और इसके आने से वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है कि वसंत ऋतु आ गई है। होली जब हम बनाएंगे तो वसंत ऋतु आ जाएगी। 2 महीने चलती है एक ऋतु, 2 महीने चलेगी, 6 ऋतु होती हैं, 12 महीने हैं। दूसरी फिर महीना आता है जिसमें राशि आती है वृषभ। वृषभ राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं और उसको अंग्रेजी में कहते हैं टॉरस, और ये आता है महीना अप्रैल से मई की ओर। फिर आती है मिथुन राशि, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? जेमिनी। और ये यहां से मिथुन राशि से ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है, गर्मियां प्रारंभ होती हैं, है ना। और ये होता है मई जून जब आता है, बहुत गर्मी होती है हिंदुस्तान। और फिर आती है कर्क राशि, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कैंसर। देखिए सुनने में तो बीमारी जैसा है पर ये एक राशि है, कैंसर है ना। ये ग्रीष्म काल 2 महीने चलता है मिथुन और कर्क। फिर आती है सिंह राशि, सिंह राशि को अंग्रेजी में कहते हैं लियो। तो लियो नाम एक कंपनी का टॉयज भी आता है, लियो टॉयज है ना, वहां से। तो यहां से शुरू होती है कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु है ना। पहले कौन सी आई? सबसे पहले कौन सी आई? बसंत ऋतु। फिर आई ग्रीष्म ऋतु, और अब आई है वर्षा ऋतु। तो इसमें 6 महीने गुजर रहे हैं। वर्षा ऋतु रहेगी सिंह राशि में और कन्या राशि में। कन्या राशि कौन सी होती है? वर्गो। उसके बाद आती है तुला राशि। तुला राशि से प्रारंभ होता है शरद ऋतु, सर्दियां प्रारंभ होती हैं, सर्दी रास यात्रा प्रारंभ होती है, और तुला राशि को अंग्रेजी में कहते हैं लिब्रा। फिर आती है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में भी सर्दियां चलती हैं और उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्कॉर्पियंस, है ना। स्कॉर्पियंस मतलब वो होता है बिच्छू, है ना। हाँ, तो चिढ़ाते थे हम लोग जिनकी स्कॉर्पियन होती थी, ओ बिच्छू ऐसे कह के बचपन में चिढ़ाते थे। फिर आती है धनु राशि। धनु राशि से शुरू होती है हेमंत ऋतु, और हेमंत ऋतु धनु का मतलब होता है सैजिटेरियस। और फिर आती है मकर राशि, जहां पर सर्दियों का अंत होने वाला है। हेमंत ऋतु अब समाप्त होने वाली है, पौष का महीना है, मकर राशि चल रही है, और इस मकर राशि के अंदर जब ये प्रारंभ होगा, कब से? 14 जनवरी को मकर राशि के अंदर सूर्य प्रवेश करेंगे और मकर राशि का महीना चालू हो जाएगा। तो इसलिए ये जो संक्रांति है ये हर महीने आ रही है, पर मकर संक्रांति क्यों आ रही है ये गीता से हमें जानना चाहिए। तो गीता के श्लोक को हम पढ़ेंगे, साथ में 8वें अध्याय का 24वां श्लोक निकालेंगे और फिर हम पढ़ेंगे। निकाला आपने, चलिए साथ में पढ़िए। अग्निर्ज्योतिर अह श्लोक षटः मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मा विदो जना। अग्निर्ज्योतिर अहम् शुक्ल षट मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मा विदो जना। अग्निर्ज्योतिर अहम् श्लोक शुक्ल षट मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मा विदो जना। अब इसका अनुवाद पढ़ते हैं सब साथ में, पढ़िए। जो परब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्नि देव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ शुभ अक्षण शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन छह मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। षट मासा उत्तरायणम, तो इसके अंदर देखिए कहा गया है परब्रह्म के ज्ञाता जो भगवान को जानने वाले हैं वह अग्निदेव के प्रभाव में। तो अग्निदेव भी किसका रिप्रेजेंटेटिव हो गया, सूर्य का, प्रकाश का। इसीलिए लोहड़ी फेस्टिवल बनाया जाता है। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है, बस सोचते हैं ढोल नगाड़ा पीटो और हो गया लोहड़ी फेस्टिवल। लोहड़ी का मतलब है सूर्य का प्रकाश, उसकी रिप्रेजेंटेटिव है अग्नि, अग्नि से भी प्रकाश निकलता है। तो इसीलिए 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेगा सूर्य, एक दिन पहले 13 तारीख की रात्रि में लोग अग्नि जलाकर के आगमन करते हैं कि कल मकर संक्रांति होगी, मकर राशि में सूर्य संक्रमण करेगा। इसलिए 13 तारीख को अग्नि जलाई जाती है क्योंकि अग्नि प्रतिनिधि है सूर्य की। और यहां पर प्रार्थना एक ही है, ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया। तो अभी यहां पे ज्ञान की शलाका जलानी है, अग्नि के चारों तरफ चक्कर काटकर मूंगफली फूल्ले खाकर रेवड़ी गजक खाके घर जाके बुराइयां करना और ना कुर्सियां डाल के बैठ जाना चुगलियां करना, ये लोहड़ी नहीं है। लोहड़ी का मतलब है जब राबी फसल जो होती थी वो कट करके आती थी और उस कटी हुई फसल की खुशी में जो बची हुई धान है, टूटे टुकड़े हैं, लकड़ियां हैं, उन सबको जलाकर क्लीनिंग की जा रही है, एक प्रकार से स्वच्छता जो मोदी जी कहते हैं ना स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता ली जाती है। और गन्ने की खेती होती है अभी इस महीने में, पूरे जनवरी फरवरी मार्च में गन्ने की खेती और फिर मार्च के बाद में गन्ना निकल करके आएगा 3 महीने बाद में। तो ये राबी की फसल जो कटती है ये हमें बताना चाहिए अपने बच्चों को, बहुत जरूरी है संस्कार देना। मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी खेती आती होगी, मुझे भी बहुत कम आती है क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया स्कूल में। तो आज बहुत जरूरत है कि हम सब बच्चों को खेती सिखाएं, रावी फसल क्या होती है, है ना। बच्चे रावी को रवि कहते हैं, रवि फसल, है ना, मालूम ही नहीं है क्या होता है, क्या है धान, क्या है सरसों, क्या है धनिया, क्या है हल्दी, क्या है उनको लगता है। एक बच्चे से पूछा, बेटा हल्दी कहाँ से आती है, कहता है परचूने की दुकान से, है ना, है ना। गन्ना कहाँ से आता है, सब्जी वाले से, है ना, ये है। और एक व्यक्ति तो मुझे पूछ रहा था हमारे स्कूल में बच्चे से कि बेटा आपके पिताजी कहाँ का पैसा कहाँ से आता है, तो बोलते हैं कि एटीएम से उसे पता नहीं है कि तनख्वाह कैसे आती है, क्या है। समाज परिवर्तित हो गया और इसका सबसे बड़ा दोष है हम सब पर कि हमने बुजुर्गों का सम्मान करना छोड़ दिया है। हम सेक्युलर फैमिलीज बना लिए हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज बना लिए हैं, हम अकेले अकेले रहने लगे हैं। अगर बच्चे दादा दादी के साथ रहते होते, अगर बच्चे परिवार में रहते तो उनको जो रिटायर्ड लोग हैं वो बच्चों को सिखाते बेटा गांव में खेती ऐसी होती है, लेकिन आज रिटायर्ड को छोड़ दिया जाता है और सब दिल्ली शहर में आके बस जाते हैं, उनको लाते नहीं है। तो उसके कारण क्या है, बच्चों को पता ही नहीं है। सबको ये तो पता है कि बस कैंपस प्लेसमेंट होना चाहिए, जॉब लगनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे आगे क्या होना चाहिए वो मालूम नहीं है। इसीलिए तकलीफ है, इसीलिए स्ट्रेस है, इसीलिए डिप्रेशन है। इसके अलावा भी बहुत बड़ी जिंदगी है। श्रील प्रभुपाद पूछते हैं कि जब सारे के सारे खेत मॉल में परिवर्तित हो जाएंगे, सभी खेत मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा परिवर्तित हो जाएंगे, तो जब भूख लगेगी तो फिर क्या खाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर? भूख लगेगी तो क्या खाएगा? हाँ जी, क्या खाएगा? कौन सा केमिकल का भी? कहा केमिकल के लिए भी तो फिर ऑर्गेनिक केमिकल आपकी तरह आईएमसी करना पड़ेगा। हाँ, पशुओं को खाएगा या फिर वो क्या खाएगा? पेन ड्राइव्स खाएगा, सॉफ्टवेयर की हार्ड डिस्क खाएगा। बोले मुझे बहुत भूख लगती है, मैं 1 GB से मेरा काम नहीं चलता है, मुझे कम से कम 10 GB दिया करो मम्मी। है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, खेत कहाँ है? उन पर तो आपने मॉल बना दिए, उन पर तो आपने फैक्ट्री बना दी। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को फार्मर नहीं बनाना चाहता है कि नहीं? लेकिन सबको अच्छा लगता है ताजी ताजी सब्जी, पता है नजफगढ़ में मिलती है, वहां पर ना मंडी में मिलती है। क्यों ताजी सब्जी पसंद है? उसे उगाने के लिए कौन है? जब खेत में काम करने वाला कहता है मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। अजी डॉक्टर इंजीनियर तो छोड़ो, आप में से अधिकतर बच्चों को आप लोगों ने सब्जी बनाना भी नहीं सिखाया होगा। कहते क्या करें प्रभु जी, प्रैक्टिकल ही नहीं खत्म होते स्कूल के, तो सब्जी कहां सिखाएंगे? आगे जाकर दुख होता है, आगे जाकर परेशानी होती है। जब भूख लगती है तो उन्हें फिर पिज्जा बर्गर खाना पड़ता है और 30 साल की उम्र में ही बीमार हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है बच्चों को सब्जी बनाना नहीं आता, बच्चों को सब्जी खरीदना नहीं आता है। तो पुनरुत्थान की आवश्यकता है। हम दोबारा से अपने बच्चों को शिक्षा दें कि बेटा ये उत्तरायण क्या होता है, मकर संक्रांति क्या होता है, ये दक्षिण भारत का नव वर्ष है, वहां पर पोंगल नाम का फेस्टिवल बनाते हैं। पोंगल, पोंगल में आप मतलब जानते हैं क्या होता है पोंगल? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय पोंगल? हाँ, दक्षिण भारतीय लोग तो बता सकते हैं, ये नॉर्थ इंडियन नहीं बता सकते हैं। ये देखिए लाइट भी कह रही है, आप लोग नहीं मानोगे तो मैं हुहाकार मचा दूंगी।
नए वर्ष का स्वागत कर रही है,
नए वर्ष का स्वागत। हार्वेस्ट तो हो गया, लेकिन पोंगल शब्द का अर्थ क्या है? है कोई यहाँ पर दक्षिण भारतीय पोंगल? यस माता जी, खिचड़ी। हाँ ठीक है, हाँ जी, हाँ पोंगल मीन्स खिचड़ी। पोंगल का एब्सोल्यूट मीनिंग अगर देखे, पोंगल मीन्स बॉइलिंग, वॉट एवर यू बॉइल, उबालना शब्द है पोंगल। उबाले तो गुड़ और चावल की खिचड़ी बनाते हैं, मीठी खिचड़ी बनाते हैं, है ना। तो स्वागत है कि ये नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो उस समय पोंगल करने में कैसे करते थे? घर में डेकोरेशन, रंगोलियां बनाना, और 4 प्रकार के पोंगल हुआ करते थे। जिस पोंगल के पीछे अगर आप कथा देखें तो कथा आती है कि जो शिवजी थे उनकी पत्नी थी सती माता। सती माता को मना किया गया कि तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां पर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ था। तो सती को मना किया, शिवजी ने कहा देखो जहां इनविटेशन नहीं आए वहां जाना नहीं चाहिए, जहां इनविटेशन ना आए वहां जाना नहीं चाहिए। तुम्हारे पिता के घर से इनविटेशन नहीं आया, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आजकल माताएं क्या करती हैं, जबरदस्ती खींच के ले आती हैं। मेरे घर के लिए तुम्हें नखरे आते हैं, है? अपने घर जाना हो तो ऐसे ही चले जाते हो, और मेरे घर के लिए आपको इन्विटेशन चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, तो वो कुछ नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चलना पड़ेगा। तो शिव जी बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हे सती, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। सती माता देखती हैं कि ऊपर से कई कई विमान जा रहे हैं, देवता जा रहे हैं, अरुण जा रहे हैं, वरुण जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। कहे कहां जा रहे हैं? कहे माता आप ही के पिता के यहाँ तो एक फेस्टिवल है, यज्ञ हो रहा है। अच्छा, हमको तो बुलाया नहीं है। तो इस गिल्टी कॉन्शियस होकर वो शिव जी से कहती है, आपको मेरे पिता से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सारी माता यही बोलती रहती हैं, आपको पता नहीं मेरे मायके से क्या प्रॉब्लम है, आप वहां जाना ही नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से शिव जी ने कहा देखो जब तक प्रेम पूर्वक ना बुलाया जाए, बिकॉज जो ये होते हैं ना सन इन लॉ, दामाद, ये एक अगर शास्त्र अनुसार चले प्राचीन तो देवता के समान माना जाता है दामाद को, है ना। लेकिन अभी तो देवता के समान नहीं मानते हैं, अभी तो उसको पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जब शिवजी ने मना किया और कहा अगर तुम जाओगी ना तो अनहित हो जाएगा, बहुत बड़ा अनहित होगा। तो अच्छा ठीक है, अनहित होगा इसके कारण वो चली गई और वहां जब पहुंची तो देखा कि शिव जी के लिए कोई भी स्थान नहीं लगाया था वहां पर, शिव जी के लिए कोई जगह ही नहीं लगाई है। तो पूछा, पिताजी आपने नहीं बुलाया वो ठीक है, लेकिन कम से कम उनके लिए निकाल के तो रखते कोई जगह। तो इस हिसाब से उन्होंने देखा विष्णु के लिए स्थान है, ब्रह्मा के लिए स्थान है, पर शिव जी के लिए कोई प्लेस नहीं है। तो शिव जी के लिए जब स्थान नहीं था तो पिताजी से पूछती है ऐसा क्यों किया। पिताजी कहते हैं ऐसा इसलिए हुआ, ऐसे आदमी को कौन बुलाएगा जिसको ना रहने का तरीका ना खाने का तरीका, सा गले में सांप डालता है, शरीर में टेलकम पाउडर की जगह भभूत लगाता है, और सिर के ऊपर वो जटा बनाता है, शरीर पर मृग छाल पहनता है, हमेशा तपस्या में मग्न रहता है, ऐसे व्यक्ति को बुला के हमारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। तो जब लोग भक्त बन जाते हैं ना तब भी कई लोग बुलाना छोड़ देते हैं, कह रहे कौन बुलाया उन धोती कुर्ते वालों को, कौन बुलाया उन सिर से ऊपर उनका हेड शेव वाले लोगों को, कौन बुलाएगा, है ना। तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं यार कौन बुलाए इनको। लेकिन पत्नी का कर्तव्य है कि जहां पति की इज्जत ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो पत्नियां जाती हैं, जो स्त्रियां जाती हैं, वो हमेशा देखेंगी, आप अनुभव करेंगे जहां आपके पति का सम्मान नहीं, अगर आप वहां जाएंगे तो आपका भी सम्मान बहुत अधिक नहीं होगा, और बाद में कुछ समय बाद आपको मालूम पड़ेगा कि वो आपकी गलती थी, आपसे गलती हो गई। सती माता ने वही किया, वो अग्निकुंड में कूद गई। अग्निकुंड में कूदी तो शिव जी को बहुत क्रोध आया, पता चला नंदी आदि गणों ने बताया अरे कूद गई हैं यज्ञ कुंड के अंदर। शिव जी ने जटा से निकालकर एक बाल फेंका, उससे राक्षस प्रकट हुआ, और उस राक्षस ने क्या किया, दक्ष प्रजापति सती माता के जो पिता थे उनकी गर्दन काट दी। अभी देखो राक्षस ने गर्दन काट दी, सारा हुहाकार मच गया, विष्णु जी को बुलाया गया, विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती माता को शिव जी उठाकर ले जा रहे हैं, 9 भागों में काट दिया। उसको काटने से उनके क्रोध को शांत किया गया, तो 9 शक्ति पीठों की स्थापना हो गई, कामाख्या देवी, ज्वाला देवी, नैना देवी, जहां नैन गिरे वो नैना देवी, जहां जहां जो अंग गिरे वो देवी स्थान बन गए। लेकिन क्रोध शांत किया किसने, भगवान विष्णु ने। भगवान विष्णु हर यज्ञ के भोगता है, शिव जी भी नहीं रोक पा रहे, शिव जी क्रोध में आ गए लेकिन विष्णु जी क्रोध में नहीं आए। विष्णु जी परम ब्रह्म भगवान होने के कारण, कृष्ण परम भगवान होने के कारण हर परिस्थिति को संभालने की शक्ति रखते हैं। जब जब शिव जी पर कोई भस्मासुर नामक राक्षस प्रहार करता है, जब जब दक्ष प्रजापति की गर्दन कट जाती है, जब जब ब्रह्मा सृष्टि रचना करने में तकलीफ पाते हैं, उन समय भगवान कृष्ण रक्षा करते हैं। इसीलिए कृष्ण भगवान का जो भजन करता है वो हमेशा रक्षित होता है, सर्व रक्षित। हमें कहना चाहिए धर्म रक्षितः रक्षितः, जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करेगा, कृष्ण का भजन करेगा, कृष्ण अवश्य उसकी रक्षा करेंगे। अब लोग बड़े परेशान रहते हैं, क्या प्रभु जी घर में बड़ी परेशानी है, उस परेशानी का कारण है क्योंकि आप कृष्ण भजन नहीं करते हैं। जिस दिन कृष्ण भजन प्रारंभ करेंगे, पैसा हो ना हो गारंटी है मैं इधर ही मिलता हूं प्रशांति धाम में, लेकिन आपकी टेंशन, पैसा ना भी हो आप खुश रह सकते हैं। लेकिन खुश क्यों नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में भजन पक्का नहीं है, कच्चा है। भजन तो है और कुछ लोगों के तो है ही नहीं, और जो रेगुलर आ रहे हैं उनके पास भजन तो है लेकिन भजन पक्का नहीं है। When your devotional service is very very strong, at that time nobody can dismantle you from the path of devotional service. उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, भगवान के नाम जप को ध्यान पूर्वक जपने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस हिसाब से ये जो फेस्टिवल है पोंगल, इसको 4 तरह से बनाते हैं। एक नाम है इसका भोगी पोंगल, भोगी पोंगल, एक नाम है इसका सूर्य पोंगल, एक है मट्टू पोंगल और एक है कन्या पोंगल। तो ये 4 दिन का उत्सव मनाया जाता है दक्षिण भारत में। कई लोग तो दक्षिण भारत के भी होते हैं लेकिन जानते नहीं है कि ये 4 प्रकार के फेस्टिवल हैं, जिसमें भोगी पोंगल जो है वो इंद्रदेव की उपासना के लिए किया जाता है, और जो सूर्य पोंगल है वो सूर्य देव की उपासना के लिए किया जाता है, और जो मट्टू पोंगल है वो किया जाता है नंदी की उपासना, जो कि शिव जी के नंदीगण है, और जो चौथा है कन्या पोंगल, उसमें देवी सती की उपासना होती है। तो इस हिसाब से ये 4 पोंगल में 4 प्रकार की खिचड़ी बनाई जाती है, जो कि पोंगल उत्सव को बढ़ाती है। तो देखिए वातावरण हो गया है रात्रि का, तो इसी से पता चल रहा है कि आज की रात्रि जो बोलते हैं मकर संक्रांति से पहले की जो रात्रि है, लोहड़ी आदि पर्व से पहले की रात्रि सबसे बड़ी रात्रि होती है, है ना, सबसे लंबी रात होती है ये। और इसके बाद जब सूरज उत्तरायण में चले जाएंगे, मकर संक्रमण करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, दिन बढ़ने शुरू होंगे और रात्रि घटनी शुरू हो जाएगी, इस प्रकार से चलता है। तो मकर राशि से कर्क राशि की ओर ट्रांसफर हो रहा है। मकर राशि है ये जो अभी चल रही है, और इस राशि को क्या बोलते हैं, मकर राशि को कैप्रिकॉन, और कर्क राशि को कैंसर में जब आएगी तो 25वां श्लोक आएगा, 8वें अध्याय का 25वां श्लोक पढ़ते हैं जरा मोबाइल की रोशनी से। धूमो रात्रे तथा कृष्णा षट्मासा दक्षिणायनम् तत्र चंद्रमासं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। तो यहां पर लिखा है धूमो रात्रि तथा कृष्णा, धूमो मतलब धुआं, रात्रि मतलब रात, और कृष्ण पक्ष, ये 6 मास दक्षिण की ओर ले जाते हैं। वहां चंद्र लोक को प्रकाश योगी प्राप्त करके, जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है, मरता है, वह चंद्र लोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पे चला आता है। मतलब कि कर्क राशि के बाद अगर कोई व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है कर्क से लेके और मकर तक, तो वो व्यक्ति चंद्र लोक को जाएगा। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं 10,000 वर्षों तक चंद्रलोक में रहेगा, 10,000 ईयर्स, बट स्टिल ही विल कम बैक टू दी अर्थ, वापिस इस लोक में आएगा। तो क्या चाहते हैं, वापिस आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, शरीर कब छोड़ना चाहिए, कब छोड़ना चाहिए, उत्तरायण में। लेकिन उत्तरायण में छोड़ने के लिए कैसे करेंगे, उत्तरायण में कैसे छोड़ेंगे भाई, जरूरी है कि 6 महीने में प्राण त्यागेंगे, अपने हाथ में थोड़ी है। तो फिर यहां तो बता दिया गीता में, अगर आपके हाथ में नहीं है और आपने दक्षिणायन में छोड़ा तो कहां जाएंगे, चंद्रलोक। अभी साइंटिस्ट कहते चंद्र वहां का कोई लोक ही नहीं है, वहां तो मिट्टी है और कंकड़ है, चंद्रमा नाम का कोई लोक ही नहीं है, साइंटिस्ट ने बता दिया। एक खबर फैल गई, लोगों ने मूंगफली खाते खाते खबर पढ़ ली और गजक खाई और खचा कंकरी गजक खाते हुए वाह 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 हिंदुस्तान देखो कितना आ गए, है ना, वर्ल्ड देखो कहां पहुंच गया, मून पे पहुंच गए लोग, और बता दिया मून पे देयर इज नो लाइफ। एक मूर्ख गया, उसने जाके बता दिया देयर इज नो लाइफ, और हो गया फाइनल डिसीजन। फिर यहां पे गलत लिखा है शास्त्र में, चंद्र लोक को जाते हैं। अगर चंद्र लोक ही नहीं है तो 10,000 वर्ष कैसे कटेंगे, वहां पर लिखा है आपकी गीता में, आप ही के हाथ में चंद्रमासम, चंद्रमा का लोक, तो श्लोक गलत लिख दिया, भगवान को अज्ञानता थी क्या, साइंटिस्ट ज्यादा समझदार थे। वो गए, जैसे मान लो आपके हिंदुस्तान में कोई आए और वो आकर के रण ऑफ खच में उतर जाए, सी के अरेबियन सी से आए और रण ऑफ खच में उतर जाए, अगर रण ऑफ खच के किनारे उतर के वो कुछ ढूंढेगा तो क्या मिलेगा उसको, मिट्टी मिलेगी रण ऑफ खच की, वापस आ जाएगा। उसके कई किलोमीटर दूर जाने पर गुजरात नाम का देश प्रारंभ होगा, फिर आगे चलेगा तो दिल्ली भी है, फिर कैपिटल सिटी भी है, लेकिन वो व्यक्ति अगर किनारे से ही वापिस चला जाए तो उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है। यही किया है साइंटिस्ट ने, पहुंचे मून पर, और मून गोल नहीं है कि चारों तरफ से एक जैसा, पृथ्वी भी जैसे गोल दिखती है, लेकिन उस पृथ्वी के किनारे में अगर अरेबियन सी पे कोई उतरेगा तो उसको समुद्र दिखेगा, मिट्टी दिखेगी, वापिस चला जाएगा। उसको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि कितना बड़ा लोक है पृथ्वी, इसके अंदर कितने सारे लोग मुनीरका में बैठ के प्रशांति धाम में कथा सुनते हैं। तो कैसे व्यक्ति करे कि वो दक्षिणायन में नहीं उत्तरायण में अपना शरीर त्यागे। आचार्य कहते हैं इस उत्तरायण का एक और मतलब होता है, उत्तरा की गर्भ की रक्षा करने वाले कौन है, कृष्णा। तो इसका मतलब है इन 6 महीनों में जब ये उत्तरायण प्रारंभ होगा तो मकर संक्रांति का दिन का मतलब है हमें उसकी ओर मुड़ना है, किसकी ओर, जिसने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी, कौन है वो, कृष्णा। इसलिए मकर संक्रांति है कृष्ण भक्तों के लिए, है ना। उत्तरायण जैसे नर आयन, नर आयन का मतलब है जो नरों की रक्षा करते हैं, उत्तरायण मतलब जो उत्तरा की गर्भ की रक्षा करते हैं। तो वो भगवान कृष्ण है। और ये 6 मास कम से कम ध्यान पूर्वक भजन करें, क्योंकि ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अनुसार से देखा जाए तो ये भगवान का महीना प्रारंभ हो रहा है। तो भक्त जानते हैं कि हमारे लिए 6 महीने 6 साल नहीं है, हमें रात दिन निरंतर जप करना है, किसी भी पल प्राण त्याग दो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भीष्म पितामह थे उन्होंने महाभारत के युद्ध में बड़ी शक्ति प्राप्त करी थी अपनी भीष्म ब्रह्मचार्य प्रतिज्ञा से। तो यहाँ एक शिक्षा मिलती है कि ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाला शक्तिशाली होता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचार्य व्रत का पालन नहीं करता, चाहे वो गृहस्थ में भी हो, गृहस्थ में ब्रह्मचार्य का क्या अर्थ होता है कि पुत्र पुत्री की उत्पत्ति केवल इसीलिए हो कि वंश की वृद्धि हो, वो भक्त बने, इसलिए नहीं जैसे आजकल चलता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करके। और व्यक्ति क्या करता है, बस अपनी इंद्रिय तृप्ति करता है। अगर वो इंद्रिय तृप्ति करता है तो इस महीने में वो अपने इस व्रत का पालन नहीं कर रहा, ग्रस्त में भी रह कर के वो नीचे डिग्रेडेड है, गिरा हुआ व्यक्ति है। और उसके कारण क्या होगा, वो एक समय किसी भी परिस्थिति में शक्ति उसकी संचार समाप्त हो जाएगा और वो जब अपने प्राण त्यागेगा जीनहीन अवस्था में उसकी आत्मा होगी, आत्मा पुष्ट नहीं होगी। भीष्म पितामह के पास इतनी शक्ति आ गई थी कि उन्होंने कहा मैं अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त करूंगा। अगर आपको अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त हो तो क्या करोगे, सोने के ढेर पे चढ़ जाओगे और कहोगे यहां मर जाऊं, है ना, ताकि अगला जन्म सोने के ढेर पे हो। क्योंकि भगवान ने 8वें अध्याय में कहा अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। इसी 8वें अध्याय में अगर आप पीछे जाएंगे 5वें श्लोक में तो आप यहां पढ़ेंगे 8वें अध्याय के 5वें श्लोक पे। ये 8वां अध्याय बड़ा ही समझदारी वाला, इसका नाम है भगवत प्राप्ति। आज भगवान प्राप्त हो जाएंगे अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो। हाँ, भगवत प्राप्ति, भगवान अर्जुन को भगवत प्राप्ति कराई है इस श्लोक के द्वारा, इस अध्याय के द्वारा। तो आपने क्या पढ़ा, पहला 6 मास क्या होते हैं, उत्तरायण। कब से शुरू होते हैं, मकर संक्रांति से। और 6 मास होते हैं दक्षिणायन, वो कब से शुरू होते हैं, कर्क राशि में जब मकर सूर्य प्रवेश करता है। ये क्या होते हैं, देवताओं के दिन और रात होते हैं, 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात्रि। वैसे 6 महीने का दिन 6 महीने की रात, तो देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे सुबह उठ के व्यक्ति क्या करता है, अगर कोई भक्त है तो सबसे पहले उठ के क्या करेगा, स्नान करके भजन पूजन करेगा। इसीलिए मकर संक्रांति में स्नान की विधि है, क्योंकि देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है तो सुबह उठ के सबसे पहले क्या करता है आदमी, स्नान। इसीलिए मकर संक्रांति पे स्नान की विधि है। लोग कुंभ में स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, यमुना स्नान करते हैं, बोले क्यों, देवताओं का दिन प्रारंभ हो गया, मकर संक्रांति स्नान। उसके बाद क्या करना चाहिए, स्नान के बाद ध्यान जप करना चाहिए। तो फिर उस दिन मकर संक्रांति के दिन भक्तों को बैठ करके कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भीष्म पितामह के पास शक्ति थी, उनके पूरे शरीर में इतने तीर लगे थे कि एक भी जगह नहीं थी कि दूसरा तीर घुस जाए। मतलब जैसे अगर आपको बोला जाए पेन लेकर पेपर पे डॉट्स बनाओ, टक 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 टक, कितने बन जाएंगे, इतना सभी जगह बाकी नहीं, कई की जगह पर तो एक की जगह दो दो लग जाएंगे। वैसे ही दो दो तीर लगे हुए, पूरा शरीर छलनी हो चुका है तीर से अर्जुन के, और भीष्म पितामह ऐसे गिर गए हैं। लोग बोल रहे हैं इतना कष्ट क्यों सह रहे हैं, भीष्म पितामह त्याग दीजिए ना अपने शरीर को। भीष्म पितामह कहते नहीं, मैं कब त्यागूंगा, जिस दिन मकर संक्रांति आएगी। तो मकर संक्रांति इसलिए भी विशेष है, उसी दिन भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया जब सूर्य उत्तरायण में हो गए। भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, छोटी सी तकलीफ होती तो छोड़ देते। तो यहां पर उत्तरायण लोग बोलते हैं जब भीष्म पितामह इतने बड़े भक्त थे तो उन्होंने उत्तरायण की चिंता क्यों करी, क्या भक्त को भी दक्षिणायन उत्तरायण सोचना पड़ता है। तो उन्होंने वो वाला उत्तरायण नहीं सोचा, उन्होंने क्या सोचा, उत्तरायण का मतलब है उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने वाले का जब मुख दिख जाएगा तब मैं अपने प्राण त्यागूंगा। भगवान इस गीता के ज्ञान को अर्जुन को देना चाहते थे, उससे पहले युधिष्ठिर को देना चाहते थे। जब युधिष्ठिर को देना चाहते थे तो युधिष्ठिर ने कहा ओ लाला मुझको क्या देगा तू ज्ञान, तू तो छोटा है मेरे से, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के अवतार थे, युधिष्ठिर ने मना कर दिया, गीता का ज्ञान स्वीकार नहीं किया। तब कृष्ण ने कहा यह ज्ञान देना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ज्ञान चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में आता है, एवं परंपरा प्राप्तिम राजर्षो विदुम साकाल नेहा योगा नष्टा परंतपहा। हे परंतप, ये जो योग भ्रष्ट हो जाता है, ज्ञान जब टूट जाता है, तो मैं क्या करता हूं, परंपराओं में इस ज्ञान को लाता हूं, गुरु शिष्य परंपरा से, और पुनर्स्थापना करता हूं इस ज्ञान की। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग युग में आता हूं। तो बोले फिर किसको देते हो ये ज्ञान, एवं परंपरा प्राप्तिम राज ऋषो विदुम, राजा भी हो और ऋषि भी हो, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देता हूं। तो राजा कौन है, युधिष्ठिर, और ऋषि भी हैं, धर्मराज, सत्यवादी हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, ऋषि हैं, तपस्वी हैं। लेकिन युधिष्ठिर स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो किसको दें, तो छोटे भाई अर्जुन जो कि शरणागत थे भगवान को, उन्होंने गीता का ज्ञान उनको दिया। लेकिन अभी राजा बनने वाले कौन है, युधिष्ठिर। इसलिए भीष्म पितामह सोच रहे हैं कि कृष्ण ने ज्ञान युधिष्ठिर को तो दिया नहीं, तो कृष्ण भगवान ने इशारे में ही भीष्म पितामह को बता दिया था कि अगर मृत्यु आ भी जाए तुम्हारी बीच में, तो तुम छोड़ना मत, तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुम तभी छोड़ना जब मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं, और जब मैं तुम्हारे हृदय में प्रवेश करूंगा, हृदय से ज्ञान मैं युधिष्ठिर को दूंगा, तब युधिष्ठिर स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैं उम्र में युधिष्ठिर से बड़ा हूं। तो हमारी जब शरणागति होती है तभी ज्ञान प्रवेश करता है। जैसे आप में से कुछ लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, और हो सकता है कि मेरी उम्र कम है, तो आप बोलेंगे कि अजी हम आपकी बात क्या सुने, हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत है, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, व्हाई शुड आई लिसन टू यू। इफ यू थिंक लाइक दिस, नॉलेज विल नेवर एंटर इन योर हार्ट, नॉलेज विल एंटर ओनली व्हेन यू थिंक आई एम अ स्टूडेंट एंड द पर्सन स्पीकिंग इज अ टीचर। बस ये टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, उम्र उसमें बीच में नहीं आती है। एक होता है वयोवृद्ध और एक होता है ज्ञान वृद्ध। जो वयोवृद्ध है वो उम्र से होता है, और ज्ञान वृद्ध ज्ञान से वृद्ध होता है। जिसके पास अधिक ज्ञान हो, अगर हम उसके शरणागत होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जिस प्रकार पानी का स्वभाव है ऊंचाई से नीचे आना, वैसे ही ज्ञान का स्वभाव है कि जैसे ही किसी ज्ञानी व्यक्ति के सामने कोई शरणागत होता है, ऑटोमेटिकली ऊपर से ज्ञान नीचे की ओर बहने लग जाता है। तो क्या चाहिए, शरणागति। अगर हम शरणागति कर देते हैं, जो युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह पर शरणागति करी, 9 दिन तक भीष्म पितामह लड़ते रहे। दुर्योधन ने कहा रात को एक दिन 9वें दिन कि खाते तो हमारा हो और लड़ते हो उनकी सुरक्षा करते हो, पांडवों पे एक तीर नहीं चलता तुमसे, इतने बड़े भीष्म पितामह शक्तिशाली हो, महारथी हो, हमारे कमांडर इन चीफ हो, क्या तुम अर्जुन को मार नहीं सकते। भीष्म पितामह ने कहा चिंता मत करो, कल सुबह अर्जुन मारा जाएगा। और 5 बाण निकाल करके रख दिए, बोले ये 5 बाण रख दिए मैंने। तो दुर्योधन बोला कि 5 बाण तुमने निकाल के रखे हैं कि 5 पांडवों को मार दोगे कल, लेकिन अगर अर्जुन रात को आके 5 बाण चुरा के ले गया तो क्या होगा। तो दुर्योधन ने कहा 5 बाण मुझको दे दो, और 5 बाण दुर्योधन अपने शिविर में ले गया। जब कृष्ण भगवान अंतर्यामी है, वो अपने भक्त की रक्षा करते, उन्होंने सुना कि ये 5 बाण तो दुर्योधन ले गया, बोले तो अब कैसे रक्षा होगी। तो उन्होंने जाकर अर्जुन को बोला, अर्जुन जाओ, वक्त आ गया है, तुमने दुर्योधन को एक बार मृत्यु से बचाया था, तब दुर्योधन चाहता था तुमको कुछ देना, तब दुर्योधन को तुमने कहा था जब वक्त आएगा तो मैं मांग लूंगा, अभी वक्त आ गया है, अपनी वो पुरानी इच्छा मांग लो। कहा दे देगा, कहा देना पड़ेगा, वो वचनबद्ध है। गए उसके शिविर में जाकर के और पूछते हैं कि हे दुर्योधन, आज हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। दुर्योधन बोला लड़ाई बंद कर दो, इसके अलावा कुछ भी मांग लो, लड़ाई बंद नहीं होगी, तुम सबका खून पीकर ये लड़ाई मैं समाप्त करूंगा। तो अर्जुन कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं, नहीं नहीं हमें हमें वो नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमने तुमको एक बार बोला था कि जब हमें जरूरत पड़ेगी हम तुमसे मांग लेंगे, हमें वो 5 बाण दे दो जो भीष्म पितामह ने तुम्हें दिए हैं। तो दुर्योधन बोला तुमको कैसे पता चला। तो क्या देखता है कि सामने से शिविर के बाहर पीले रंग का वस्त्र उड़ रहा है। तो दुर्योधन समझ गया कृष्ण की चाल है, कृष्ण ने बाकर इन्फॉर्मेशन दे दिया और उनको पता चल गया 5 बाण ले गए। अभी भी भगवान माने नहीं, भगवान ने कहा क्या पता भीष्म पितामह नए 5 बाण बना ले, बड़े शक्तिशाली हैं। तो जाकर के बोला शिविर में घुस जाओ, अभी अभी दुर्योधन निकला है, और वापिस जाओ और बोलो भीष्म पितामह एक बात तो कहना भूल ही गया, ऐसे प्रारंभ करना ताकि लगे कि पुराना जो कन्वर्सेशन है वही कंटिन्यू हो रहा है। एक बात तो कहना भूल ही गया, क्या बात है, कि आशीर्वाद चाहिए आपका। तो भीष्म पितामह बड़े दुखी मन से ऐसे बैठे थे। अर्जुन ने प्रवेश किया और बोला, पितामह एक बात तो कहना भूल गया। बोले, बोलो क्या बात है। बोले, पितामह आपका आशीर्वाद चाहिए। पितामह बोले, विजयी भवा। किसको देना था? दुर्योधन को। दिया किसको? अर्जुन को। जब अर्जुन को देखा तो अर्जुन बोला, पितामह आप कितने महान हैं, मैं दूसरी सेना की ओर से लड़ रहा हूं, फिर भी आपके मन में हमारे लिए प्रेम है। तब आंख खोल के देखा, अर्जुन तुम कैसे आए। फिर देखा शिविर के बाहर क्या उड़ रहा है, पीले रंग का वस्त्र उड़ रहा है हवा में। भीष्म पितामह भी समझ गए कि किसकी चाल है, कृष्ण की। तो इसलिए जिसके पास कृष्ण है उसको डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन हम डरते इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं कृष्ण हमारे जीवन में नहीं है, वो तो अर्जुन नाम की एक कहानी में थे, महाभारत नाम की कहानी में थे, मेरे तो घर में एक फोटो टंगा हुआ है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कृष्णा इज एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, जस्ट नीड दी सरेंडर। जिस पल आपने शरणागति कर दी, कृष्ण आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और फिर ऐसी रक्षा करेंगे, ऐसी रक्षा करेंगे कि संजय गीता के अंतिम श्लोक में कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुव नीतिर्मतिर ममः। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, अभी प्रारंभ नहीं हुआ है युद्ध, लेकिन मैं एक बात को बोल सकता हूं इस गीता सुनने के बाद में, यत्र योगेश्वर कृष्णा, जहां कृष्ण जैसे योगेश्वर भगवान है, जहां अर्जुन जैसे पार्थ पांडव है, वहां पर तत्र श्री विजयो भूतिर, वहां पर क्या होगी, विजय निश्चित है। तो आप भी चाहते हैं आपके बच्चों के जीवन में निश्चित विजय आए, आपके जीवन में निश्चित विजय आए, तो क्या लेके आना पड़ेगा जीवन में? कृष्ण। कली काले नाम रूप कृष्णस्तु अवतार। कलयुग में भगवान किस रूप में आए हैं? नाम के रूप में आए, हरि नाम के रूप में आए। इसीलिए जो व्यक्ति रात दिन जपता रहता है वो भगवान उसके साथ खड़े रहते हैं, एकदम साथ साथ चलते हैं, हर परेशानी में खड़े होते हैं। बोलना भी नहीं पड़ेगा, प्रभु रक्षा करो, ऑटोमेटिक सिस्टम है, सुदर्शन चक्र चालू हो जाएगा आपकी रक्षा करने के लिए। लेकिन अगर आप कृष्ण भक्त नहीं हैं, तो कृष्ण कहते हैं नाइन्थ चैप्टर में 29वें श्लोक में कि समो अहम सर्व भूतेषु नहम द्वेषो नास्ति ना प्रिया। मैं सबके लिए इक्वल हूं, मैं ना किसी से प्यार करता हूं ना किसी से दुश्मनी करता हूं। यू हैव टू पे फॉर योर कर्मास, जो कर्म किए हैं उसके लिए भोगो, लेकिन ये भजन्ति तुमाम नित्या, जो मेरा भजन करता है वो मेरा प्रिय बन जाता है। ये स्पेशल है, 9th chapter 29th श्लोक में भगवान ने कहा, जो भजन करेगा वो प्रिय बनेगा, जो भजन नहीं करेगा उसके लिए आई एम इक्वल। जैसा दुश्मन के साथ ट्रीटमेंट, वैसा ही अच्छे आदमी। आदमी कहता है मैं बहुत अच्छा हूं, पता है मैं सिर्फ चैंटिंग नहीं करता हूं, बट हम बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत ही अच्छे हैं, हम इतनी गरीबों की मदद करते हैं, इतनी दवाइयां बांटते हैं, हमारे घर में कोई अनियन गार्लिक नहीं खाते, हम बहुत अच्छे हैं। देन वॉट? You are not chanting Krishna, you are not dear to Krishna. Then what? Krishna says, Samo aham sarva bhuteshu, I am equal to all. मैं सबके लिए समान हूं, लेकिन जो मेरा भजन करता है उसी के लिए मैं different हूं। जो मेरे नाम में, मैं उसके काम में, जो अपने काम में तो मैं अपने धाम में, मैं भी नहीं आता उसके लिए। अगर तुम चाहते हो कि भगवान आए तो उसको भगवान का नाम पुकारना पड़ेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दैट इज द पावर ऑफ द चैंटिंग। भगवान के नाम जब बहुत शक्तिशाली है। तो भीष्म पितामह ने 9 दिनों तक लेटे रहे बाणों की सैया के ऊपर। अर्जुन ने सामने से तीर चलाए और भीष्म पितामह के क्यों तीर नहीं चला पाए, क्योंकि उनके सामने शिखंडी सामने आ गए थे। अर्जुन ने शिखंडी का रथ आगे करके, क्योंकि शिखंडी अपने पूर्व जन्म में एक स्त्री थे, इसलिए भीष्म पितामह ने कहा मैं क्षत्रिय हूं, किसी स्त्री पर वार नहीं कर सकता। आजकल हम देखते हैं लोग लिखते हैं घर के नाम के पीछे चौहान, हम क्षत्रिय हैं। अरे नाम से क्या होता है, आप अपनी स्त्री के ऊपर हाथ उठा देते हैं, आप उस पर डाइवोर्स केस कर देते हैं, आप उसके ऊपर 50 तरह की लालछन लगा देते हैं, तो आप क्षत्रिय नहीं है, आप ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गुण और कर्मों से होता है, नाम से नहीं होता है कि जाति के पीछे लिख लिया, बोले हम तो जी ये है, हम तो जी वो है, ऐसे नहीं होता। आपके अगर क्वालिटीज नहीं है, आपके एक्शन अगर नहीं है क्षत्रिय वाले, तो आप क्षत्रिय नहीं है, चाहे नाम के पीछे कुछ भी लगाओ। तो इस हिसाब से जो भीष्म पितामह थे उन्होंने शिखंडी पर वार नहीं किया और अर्जुन लगातार तीर छोड़ते रहे, इतने तीर कर दिए, इतने तीर कि पूरे शरीर के ऊपर क्या आ गया, खून ही खून निकल आया, इंच भी जगह नहीं है, पूरी शेष क्या कहते हैं शर सैया बन गई, तीरों की सैया बन गई, उस पर सोए लेटे रहे, इंतजार करते रहे। किस दिन का? 2 महीने तक इंतजार किया। 9वें दिन तक युद्ध किया, 10वें दिन भीष्म पितामह गिर गए थे, 18 दिन का ये महाभारत का युद्ध था, 10वें दिन भीष्म पितामह गिरे, 8 दिन तो महाभारत का युद्ध देखा लेटे लेटे, और युद्ध समाप्त होने के भी 2 महीने बाद तक 50 दिनों तक, 58 दिन में से 8 दिन वहीं लेटे रहे और 50 दिन और 50 डेज मोर भीष्म पितामह पड़े रहे, इंतजार कर रहे थे किसका? षट मासम उत्तरायण, मकर संक्रांति आ जाए। तो ये जो मकर संक्रांति है, उत्तरायण का मतलब है भीष्म पितामह इंतजार कर रहे थे कि कृष्ण आ जाए। कृष्ण आ गए, बोले कि भीष्म पितामह तुम लेटे हो, युधिष्ठिर महाराज आदि सभी को लेके आए और जानते थे युधिष्ठिर को ज्ञान दिलवाना है क्योंकि अब ये राजा बनने वाला है और ऋषि है, इसको ज्ञान देना बहुत जरूरी है। भगवान ने उसके हृदय में प्रवेश कर भीष्म पितामह के युधिष्ठिर को ज्ञान दिया। राजधर्म, स्त्री धर्म, कई प्रकार के धर्म सिखाए। जैसे ही स्त्री धर्म सिखाया, द्रौपदी हंसने लग गई। द्रौपदी कहती है, वाह भीष्म पितामह, आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं, अभी ज्ञान दे रहे हैं, तब आपका ज्ञान कहां चला गया था? जब मेरा चीरहरण हो रहा था, सभा के अंदर मेरे वस्त्र निर्वस्त्र कर दिया गया और आप वहां खड़े होकर के देख रहे थे, वहां आपका क्षत्रिय भाव कहां गया था? आपकी भीष्म प्रतिज्ञाएं कहां गई थी? आपकी स्त्री रक्षा कहां गई थी? और आज आप स्त्री को धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, स्त्री धर्म का ज्ञान। क्या धर्म का ज्ञान देंगे? आपने स्त्री रक्षा करना तो आता नहीं। भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आए। भीष्म पितामह ने कहा, उस पल मैं इसलिए रक्षा नहीं कर पाया क्योंकि उस पल मैं दुर्योधन का नमक खा रहा था और मैं नमक के साथ में बेईमानी नहीं कर सकता हूं, ये मेरा धर्म था, राजधर्म। और अब तीर लगने से भगवान अर्जुन के मेरा क्या हुआ, दुर्योधन का वो अपवित्र खून पूरा शरीर से इन 58 दिनों में बह गया है और अब जो मेरे शरीर में बचा है वो सिर्फ कृष्ण का नाम पवित्र बचा और कुछ नहीं बचा, इसलिए अब मैं योग्य हूं कि मैं क्या दे सकता हूं, स्त्री धर्म की शिक्षा दे सकता। तब वहां पर उन्होंने 5 प्रकार की शिक्षाएं भीष्म पितामह ने किसको दी? युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों को दी। और फिर भीष्म पितामह ने उस दिन अपने प्राणों को समाप्त किया। लेकिन हम तो भीष्म पितामह जैसे नहीं है, हम तो उतने ऊंचे भक्त नहीं है, तो फिर हमारा क्या होगा? अभी 8वें अध्याय का 5वां श्लोक आपने निकाला था, पढ़िए इसमें क्या कहते भगवान। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयम। जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अब बताओ, अंत काल में भगवान का स्मरण कर सकते हैं? हो जाएगा अगर पूरा जीवन नहीं किया हो तो? और भगवान ने बोल दिया, अंत काल में जैसा स्मरण करोगे तभी मेरे स्वभाव को प्राप्त करोगे। और इसके बाद जो श्लोक है, ओहो, बड़ा ही खतरनाक श्लोक है, 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। क्या कहते हैं भगवान अर्जुन को? यम यम वापी स्मरण भावम त्याजन्ते अंत कलेवरम ताम तामेवेत कौन्तये सदा तद भाव भावितम। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मरते समय मान लो याद आ गया मेरा टॉमी, तो कौन बन जाओगे आप? कुत्ता। याद आ गया कि है ना मेरी मछली थी एक्वेरियम में, उसने ऐसे दुख के समय में मेरा साथ दिया, जब कोई नहीं होता तो मछली बेचारी अकेली ऐसे घूमती थी, बड़ी प्यारी है मेरी, तो क्या बन जाएगा? मरमेड बन जाएगा, मरमेड फिश। तो वो इतनी मछली बनेगा, मरते वक्त याद आ गया, मरते वक्त ओह मेरा पूरा जीवन दुख में गया, बस वो शादी के कुछ पल अच्छे थे जब हम घूमने गए थे और मेरी गोदी में वो पोलर बियर बैठा था, तो क्या बन जाएगा? पोलर बियर। जो जो स्मरण करेगा भाव का वो व्यक्ति को प्राप्त होगा। इसका मतलब इस सभा में बैठी हुई स्त्रियां जो हैं उन्होंने अपने अंत काल में पिछले जन्म में क्या स्मरण किया? स्त्री का स्मरण किया। और जितनी सभा में बैठे पुरुष हैं उन्होंने अपने अंत समय में किसका स्मरण किया? पुरुष का स्मरण किया। इसलिए पुरुष शरीर प्राप्त किया कि उन्होंने स्त्री शरीर प्राप्त किया। लेकिन स्त्री पुरुष कुत्ता बिल्ली सुअर हाथी घोड़ा ये है सारे के सारे मृत्यु होने वाले ही। अगर हम चाहते हैं कि हम शरीर छोड़ने के बाद वापस इस संसार में ना आए, जैसे भीष्म पितामह ने इंतजार किया छठ मास उत्तरायणम, क्यों उसमें जो व्यक्ति शरीर त्यागता है वो वापस इस संसार में नहीं आता है, वापस इस दुखलेम संसार में नहीं आता, जहां एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, नॉलेज है, फिर डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि कृष्ण नहीं है, कृष्ण नहीं है। जिसके जीवन में कृष्ण है, उत्तरायण मतलब उत्तरा की रक्षा करने वाले कृष्ण है, तो वो व्यक्ति जब भी अपना शरीर त्यागेगा, सुबह को छोड़े, रात को छोड़े, छह मास में छोड़े उत्तरायण में, छह मास दक्षिणायण में, वो जाएगा कहां? कृष्ण लोक में। और भगवान क्या कहते हैं? यत गत्वा न निर्वत्तते दद्धामं परमं मम, मेरा धाम ऐसा है वहां आने के बाद इस संसार में वापिस नहीं आना पड़ता। तो ये मकर संक्रांति का दिवस स्मरण करने का है भगवान को, ये लोहड़ी का उत्सव है, अग्नि से स्मरण करें कि ये भगवान का प्रतिनिधि है, इस अग्नि का प्रकाश जैसे ही अंधकार में रोशनी फैला रही है, ऐसे ही हमें भी रोशनी प्रदान हो, हमारी ज्ञान समाप्त होकर ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर आए। और मकर संक्रांति का दिवस एक और इंपॉर्टेंट दिन है, इसी दिन जो ये गंगा मैया है, ये जाकर के सागर, गंगा सागर कलकत्ता में जाके मिल जाती है, भगीरथ महाराज की प्रार्थनाओं पे गंगा जी स्वर्ग लोक से नीचे उतर के आई, भगवान के पैर के अंगूठे से जब भगवान ने वामन अवतार लिया तो तीन पग भूमि मांगी बलि महाराज से, दो पग में नीचे के लोग और ऊपर के लोग नाप लिए, तीसरा पैर रखने की स्थान नहीं था, जब दूसरा पैर उठा रहे थे और ऊपर को गए तो कारण सागर का जल के अंदर छेद हो गया और उस छेद से टप टप करके पानी गिरने लगा और उस पानी से क्या हो गया, गंगा मैया प्रकट हो गई और स्वर्ग लोक में उनका नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ा स्वर्ग लोक में? मंदाकिनी। पृथ्वी पे क्या पड़ा? भगीरथी। और नीचे के लोक में क्या पड़ा? भोगवती। तो इस प्रकार से तीन स्थानों में बहने वाली गंगा मैया आई नहीं इस पृथ्वी पर, तो भगीरथ महाराज के जो परदादा थे उनका नाम था सगर महाराज, सगर महाराज के 60,000 पुत्रों को भगवान कपिल ने, कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था। वो तपस्या कर रहे थे ऐसे करके ध्यान से, कलकत्ता के पास सागर, गंगा सागर के किनारे कपिल मुनि आश्रम में तपस्या कर रहे थे। 60,000 बच्चे गए कि एक घोड़ा हमने छोड़ा है, को तुम्हारे हमने देखा है, इसके अंदर बंधा हुआ है, कुटिया के पास इंद्र ने बांध दिया था। बोले कुटिया में तुम्हारे घोड़ा बंधा है तो तुम तो चोर निकले। अब वो बेचारे तपस्या कर रहे कपिल भगवान, और ये बार बार चोर 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 बोले, अपराध इतना कर दिया, इतना वैष्णव अपराध किया कि उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही आंखें खोली तो क्या हुआ, भस्म हो गए 60,000 बच्चे, भस्म हो गए इकट्ठे। जब 60,000 सगर पुत्र भस्म हो गए, सगर महाराज बड़े परेशान हुए, बोले अब कौन इनको पवित्र करेगा, क्योंकि गंगा मैया तो है नहीं, अस्थि विसर्जन आप तो करते हो गंगा में, लेकिन इनकी अस्थियां कहां जाए? ऋषि मुनियों ने कहा गंगा लाओ। सगर महाराज ने प्रार्थना करी, गंगा नहीं आई। उनके पुत्र अंशुमन ने प्रार्थना करी, गंगा नहीं आई। इस प्रकार से जब भगीरथ महाराज उनकी परंपरा में, वंश में प्रकट हुए, उनकी प्रार्थनाओं पर गंगा मैया कहां आई? पृथ्वी पे। जब आने लगी गंगा मैया तो उन्होंने कहा मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि जब मैं इस संसार में आऊंगी तो मेरे इस वेग को रोकेगा कौन, और जब मैं संसार में आऊंगी तो मुझे पवित्र करेगा कौन? दिल्ली से तो लोग आएंगे और आकर के अपने गंगा स्नान करेंगे, लस्सी पियेंगे, चोटी वाले के पराठे खाएंगे, आलू के निकल जाएंगे, और बोलेंगे गंगा उसमें भर लेंगे थोड़ा सा जो होता है ना केन के अंदर, और बोले गंगा जल भी ले आए चोरी करके बिना बताए, है ना। हम तो हाँ प्रभु जी, हम तो अपने घर से ले गए थे केन, हमने ना वो किनारे पे खड़ी करी कार, गुड़ 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 पानी भरा निकल लिए बिना बताए, गंगा मैया को पता भी नहीं चला हमने चोरी कर ली, है ना, 10 रुपए भी बच गए हमारे, है ना। तो ऐसे ऐसे भी करते हैं लोग, तो फिर मेरे साथ ऐसा जो व्यवहार करेंगे मैं कैसे पवित्र होंगी? तो भगीरथ महाराज ने उनको उत्तर दिया, पहला उत्तर दिया कि मैं शिवजी से प्रार्थना करके आया हूं, शिवजी ने कहा है कि अपनी जटा में आपके इस वेग को संभाल लेंगे। भगवान कृष्ण के बड़े भारी भक्त हैं शिवजी, वैष्णवानाम यथाम शंभु, हे मैया वैष्णवों में सबसे बड़े हैं शंभु, भागवत पुराण कहती है। तो शंभु भगवान क्या करेंगे, आपके वेग को अपनी जटा में रोक लेंगे और धीरे धीरे इस पृथ्वी पर छोड़ेंगे। अगर नहीं रोकते और गंगा आ जाती डायरेक्ट तो पृथ्वी ढम से रसातल में चली जाती, लेकिन धीरे धीरे छोड़ी गई। लेकिन जब लोग आएंगे तो फिर क्या होगा, मेरी पवित्रता का क्या होगा? बोले कलयुग में द्वापर युग में, त्रेता युग में, सतयुग में, जब भी भगवान का नाम भजन करने वाले लोग, जप करने वाले लोग जब आएंगे बोलते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, जब इस प्रकार का नाम जप करते हुए लोग आएंगे और हे गंगा मैया आपके जल में अपना पैर रखेंगे तो उनके पैर रखने से आप पवित्र हो जाओगे, ये शक्ति है। तो नाम जप करने वाले को गंगा जी में स्नान की आवश्यकता नहीं है, ये गीता के महत्व में ही शंकराचार्य ने लिख दिया, गीता सकृत अमृत स्नानम, जो गीता के अमृत में स्नान करता है संसार कल्म नाशनम, उसका संसार कल्मश नष्ट हो जाता है, उसको फिर जल में स्नान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। नहाना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहाना छोड़ दें। बोले प्रभु जी सर्दियों में बड़ी अच्छी टेक्निक बता दी, हम तो कई दिन से सोच रहे थे कुछ ऐसा पता चल जाए कि नहाना नहीं पड़े। आप तो हम रोज गीता पढ़ेंगे पर नहाएंगे नहीं, अभी फरवरी में नहाएंगे, है ना। तो वो नहीं कह रहे हैं, पवित्रता अंदर से और बाहर से दोनों से होनी चाहिए। जितना अंदर से पवित्र हो उतना बाहर से भी पवित्र हो। जब ये प्योरिटी रहेगी, श्रील प्रभुपाद कहते थे प्योरिटी इज द फोर्स, प्योरिटी फोर्स है। एक बार श्रील प्रभुपाद सहारनपुर गए थे अपने किसी काम से, और इलाहाबाद से प्रयाग फार्मेसी नाम की एक फार्मेसी चलाते थे, और प्रभुपाद जी दवाई बनाते थे आयुर्वेदिक। तो आयुर्वेदिक दवाई लेकर के प्रयाग से सहारनपुर गए, सहारनपुर पहुंचे तो होटल वाले को कहते हैं जो एक सराय थी उसमें, कि मैं रुकना चाहता हूं। बोले जी डॉक्टर बाबू आपका वो कमरा तो क्या है ऑलरेडी बुक है, आप कहें तो कोई और कमरा दे दें। कहा देखिए ऐसा कमरा दीजिएगा जिसमें मैं कीर्तन करूं और उस आवाज से किसी को तकलीफ ना हो। तो बोले सबसे किनारे वाला एक कमरा आपके लिए है। तो ये चले गए, इन्होंने अपना सामान रखा और सो गए। और दूसरे दिन सुबह 4:30 बजे ठंडे पानी से स्नान करके आ रहे थे, तो जो आदमी वहां पर केयर टेकर था वो अपने असिस्टेंट को बुलाता और कहता है, ओ छोटू तूने ध्यान नहीं दिया कि है ना सुबह सुबह 4:30 बजे कोयला जला दिया। सारे लोग तो 9 बजे नहाते हैं सर्दियों में, 4:30 बजे कोयला जलाएगा तो ऐसे हो गया हमारा ये होटल चल गया, ऐसे तो सब खत्म हो जाएगा कोयला लकड़ी, सुबह 4:30 बजे तूने क्यों जलाया। बोला अरे साहब क्या बात करते हैं, मैं 4:30 बजे कभी जलाता ही नहीं हूं, मैं तो खुद ही सो रहा था, मैं कहां जलाऊंगा। कहा नहीं अभी एक आदमी को देखा मैंने, वो उसके शरीर से भाप निकल रही थी और वो अभी अभी स्नान करके निकला है। तो बोले आप कहीं उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं जो कि इलाहाबाद से आता है और वो दवाइयों का काम करता है। कहा हाँ हाँ उसी की बात कर रहा हूँ, वही व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। कहा ओ अच्छा, वो तो कोई दिव्य व्यक्ति है, उसके शरीर से तो एक तेज निकलता है, और आप बात कर रहे हैं कोयले की, वो तो कड़क सर्दी के अंदर रात्रि में भी ठंडे पानी से नहाता है और सुबह भी ठंडे पानी से नहाता है। तो प्रभुपाद कहते थे प्योरिटी इज द फोर्स। और जब वो कीर्तन करते थे सारे होटल के लोग आके उनके कमरे के बाहर खड़े हो जाते थे। इस हरि नाम में इतना आकर्षण है, हम यहां जप करने बैठते हैं आप सब लोग आकर बैठ जाते हैं, क्यों? नाम में बड़ा आकर्षण है। हरि नाम नहीं होगा तो फिर कोई यहां पर आकर नहीं बैठेगा। हरि नाम जो व्यक्ति जपता है, सारे लोग कहते हैं आपके अंदर एक कुछ अलग सा तेज आ गया है कि नहीं। लोग बोलते हैं आप बड़े डिफरेंट दिखने लगे हैं, आपके चेहरे में एक अलग सा तेज है, कौन सी क्रीम लगाते हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं लोरियल लगाते हैं कि हैंडसम क्रीम लगाते हैं कि वो लगाते हैं आजकल आती आयुर क्रीम लगाते हैं कि गोल्ड फेस पैक लगाते हैं। हम कहते हैं कुछ नहीं लगाते हैं, हमें हरि नाम की क्रीम लगाते हैं, है ना। हरि नाम की क्रीम जो लगाता है उसका काला रंग का चेहरा भी ऐसा खिलेगा, आदमी कहेगा इतना काला है पर इतना तेज है। तो अगर कोई इतनी काला हो तो क्रीम लगा करके अपना समय बर्बाद ना करे, क्या लगाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे, इनको तारने के लिए भगीरथ महाराज जी स्वर्ग लोक से किसको ले आए पृथ्वी पर, गंगा मैया को। गंगा मैया आई गंगोत्री से होती हुई, इलाहाबाद से होती हुई, और पूरा बंगाल के अंदर जाकर जब मिलती हैं तो उस दिन को बोलते हैं मकर संक्रांति। उस दिन जाकर बंगाल की खाड़ी में द बे ऑफ बंगाल में जाके गंगा मैया जाकर मिल जाती हैं। और इसी दिन बहुत बड़ा मेला लगता है जिसका नाम है गंगा सागर मेला। लेकिन इसके बीच में एक और कथा आती है, एक मुनि थे जो कि कलकत्ता के पास मायापुर नामक धाम में बैठे तपस्या कर रहे थे, उनका नाम था झानू मुनि। जानु मुनि बैठ के तपस्या कर रहे थे और गंगा मैया बड़े बेग से आ रही थी और भगीरथ आगे आगे दौड़ रहे थे रास्ता बताते हुए कि मैया इधर से इधर से इधर से पवित्र करने वाला स्थान बताते हुए भगीरथ आगे आगे दौड़ रहे थे क्योंकि उनको वहां तक ले जाना था जहां उनके पूर्वजों की अस्थियां पड़ी थी 60,000 अस्थियां पड़ी थी बच्चों की। वो भाग रहे हैं इधर से मैया मैया पीछे पीछे वेग से आती जा रही है और एक स्थान पर जानु मुनि का आश्रम था। जानु मुनि तपस्या कर रहे थे और उन्होंने पूजा के लिए अगरबत्ती दिया तुलसी पत्र पुष्प आदि रखे थे। जानु मुनि तपस्या कर रहे हैं और गंगा मैया ने घुड़ुम करके सारा उड़ा दिया और सामने से निकल गई। उनकी जो पुष्प आदि था वो सब हट गया। अब भगवान की अर्चना में कोई अड़चन डाले ये जानु मुनि को स्वीकार नहीं था। जानु मुनि ने क्रोध की अग्नि से देखा और कहा ये पृथ्वी पर कोई थोड़ा सा जल आ गया है और उसके कारण मेरी पूजा में अड़चन आई सारा पी गए। गंगा मैया समझ भगीरथ फिर रोने लगे बोले इतनी मुश्किल से तो वहां से गंगोत्री से उतार के लाया और मायापुर तक भागा भागा लाया इतने साल निकल गए इतने पूर्व लगता है मेरे पूर्वजों के नसीब में शुद्धि नहीं है वो यहीं रह जाएंगे इसी संसार में। जानु मुनि के आगे गिड़गिड़ाने लगे। जानु मुनि कहते हैं मुझे नहीं पता था ये कारण है परंतु इन्होंने अपराध किया है। कहा मैं आपकी अर्चना का सारा व्यवस्था करता हूं परंतु आप क्या करिए गंगा मैया को प्रकट कर दीजिए। तो जानु मुनि ने अपनी जंघा में एक चाकू लेकर ऐसे फाड़ा और यहां से क्या प्रकट कर दिया गंगा मैया प्रकट करी। इसीलिए गंगा मैया जानु मुनि से प्रकट हुई इसलिए उनका नाम हो गया जाह्नवी। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि जंघा से प्रकट हुई इसलिए उनका नाम हो गया जाह्नवी जाह्नवी। तो है ना इस प्रकार से जाह्नवी नाम भी गंगा का एक नाम है। जाह्नवी मगीरथी मंदाकिनी भोगवती और गंगा तो है ही है। तो ये गंगा मैया अनेक स्थानों से पवित्र करती हुई जाती है गंगा सागर में। तो मकर संक्रांति के दिवस में बहुत कुछ होता है। पहला क्या होता है बताइए अब आपका फीडबैक चालू। पहला तो उत्तरायण होता है। कौन उत्तरायण होता है सूर्य देव आते हैं कौन सी राशि में मकर राशि में। और फिर क्या होता है 6 महीने तक उत्तर दिशा में रहते हैं और 6 महीने फिर दक्षिणायन और उसके साथ देवताओं का दिन होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है स्नान तो स्नान करना चाहिए और फिर क्या होता है जब तो जब ध्यान करना चाहिए और भगवान को पुष्प आदि से सुंदर तरीके से जब कोई वेलकम होता है तो सुंदर सजावट करते हैं ना तो पतंगे उड़ाना एक सजावट करना है। आसमान में देवताओं के लिए पतंगे उड़ाना ये भी बताया गया कि पतंगे इसलिए उड़ाई जाती हैं कि देवता लोग प्रसन्न हो कि आपके लिए रंग बिरंगी हम पतंगे आपको वेलकम करने के लिए कि आपका डे स्टार्ट हो गया। तो गुड मॉर्निंग कहने का तरीका है पतंगे उड़ाना देवताओं को गुड मॉर्निंग बोल देना। और क्या होता है पोंगल नामक फेस्टिवल होता है जिसमें उबला हुआ चावल और गुड़ बनाकर के लोगों को देते हैं और आजकल हम लोग गुड़ की गजक खाते हैं तो वो भी क्या होता है तिल और गुड़। तो ये सर्दियों के लिए भी अच्छा होता है। और साथ में लोहड़ी फेस्टिवल होता है क्योंकि सती माता ने भी इसी दिन अपने शरीर को क्या किया था अग्नि में प्रवेश कराया था। तो अग्नि सती प्रतिज्ञा करने के लिए है कि अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो हम इस संसार में इसी प्रकार अग्नि में भस्म हो जाएंगे एक दिन। इसलिए अग्नि की परिक्रमा काटते हुए साक्षी मानते हुए कहते हैं कि हे अग्नि हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में ज्ञान का प्राकट्य करिए आप हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति का प्राकट्य करिए। तो अभी हम लोग जाएंगे अग्नि के आगे कीर्तन करेंगे तो वहां पर भी आपको यही प्रार्थना करनी है कि हे अग्नि क्या करो कृष्ण भक्ति का प्राकट करो मेरे जीवन में से एंजाइटी डिप्रेशन सब हटाओ और मुझे अपने कृष्ण चरणों में भक्ति में लगाओ। ऐसी प्रार्थना जो करेगा वो सही मायने में लोहड़ी है वो सही मायने में मकर संक्रांति है वही सही मायने में पोंगल है।